दोस्तों 15 खुरदाद अर्थात 5 जून के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसमें धैर्य प्रतिरोध और उसका जारी रहना बहुत जरूरी है। कोई भी संघर्ष धैर्य व प्रतिरोध के बिना सफल नहीं हो सकता। जिस इंसान का उद्देश्य जितना बड़ा होता है उसे उतना ही अधिक धैर्य व संयम से काम लेना पड़ता है। इंसान को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो इंसान अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है वो कठिनाइयों व समस्याओं से विचलित नहीं होता और उसकी नज़र सदैव गंतव्य पर होती है। 15 खुरदाद 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 को ईरान में जो घटना घटी वो शाह की अत्याचारी सरकार के खिलाफ ईरानी राष्ट्र के संघर्ष के इतिहास में अमर हो गई। उस समय ईरान में जो राजनीतिक हालात थे उनके दृष्टिगत तीन पहलुओं से 15 खुरदाद की घटना महत्वपूर्ण है। पहला ये कि इस ऐतिहासिक घटना का संबंध ईरान के इस्लामी क्रांति की पहले की घटनाओं से है। जिस चीज ने 15 खुरदाद की घटना की भूमि प्रशस्त की वो जन विरोधी कैपिटुलेशन का पारित होना था। इस कानून के अनुसार अमेरिकी जो भी अपराध ईरान में करते उन पर ईरान में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
15 खुरदाद की घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इससे ये स्पष्ट हो गया था कि ईरानी जनता की क्रांति का आधार इस्लाम था, जिसका उससे पहले कोई इतिहास नहीं था। ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खोमेनी की एक विशेषता ये थी कि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उन्होंने 15 खुरदाद की घटना से 3 दिन पहले आशुरा के उपलक्ष्य में पवित्र नगर कुम के धार्मिक शिक्षा केंद्र फैजिया में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका, इसराइल और शाह के अत्याचारी सरकार की नीतियों और उनके षड्यंत्रों की पोल खोली थी।
उनके इस भाषण पर शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और शाही सरकार के सुरक्षा बलों ने 15 खुरदाद 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 की सुबह में पवित्र नगर कुम में स्थित इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तेहरान स्थानांतरित करके उन्हें जेल में बंद कर दिया। जब इमाम खुमैनी के गिरफ्तार होने की खबर ईरानी शहरों में फैली तो कुम, तेहरान, वरामीन, मशहद, इस्फहान और शिराज जैसे नगरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन जारी रहे यहाँ तक कि इमाम खुमैनी को दोबारा गिरफ्तार करके 15 वर्षों के लिए देश से निष्कासित कर दिया गया।
शाह ने इमाम खुमैनी को सबसे पहले तुर्की निष्कासित किया, फिर वहां से उन्हें कुछ समय के बाद इराक के पवित्र नगर नजफ और फिर वहां से फ्रांस निष्कासित कर दिया। घुटन और दमन के वातावरण में स्वर्गीय इमाम खुमैनी विश्व के वर्चस्ववादियों और साम्राज्यवादियों को संबोधित करके कहते थे, शक्तियों, बड़ी शक्तियों और उनके नौकरों व पिछलग्गों को जान लेना चाहिए कि अगर खुमैनी अकेले भी रह गए तब भी अत्याचार, कुफ्र और आने के शुरुआत से संघर्ष का उनका जो रास्ता है उसे वो बाकी रखेंगे और महान ईश्वर की मदद से इस्लामी जगत के संघर्षकर्ताओं के रहेंगे और नंगे पांव रहकर उन तानाशाहों की आराम की नींद को हराम कर देंगे जो अत्याचारों के जारी व बाकी रहने पर आग्रह कर रहे हैं।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि हमारा दायित्व है कि हम अन्याय व अत्याचार के मुकाबले में डट जाएं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अत्याचार से संघर्ष करें, उसका विरोध करें। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि कहीं हम नाकाम न हो जाएं। पहली बात तो यह है कि हम विफल व नाकाम नहीं होंगे, ईश्वर हमारे साथ है। और दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हम विफल हो जाएंगे तो ये विदित विफलता व नाकामी होगी और आध्यात्मिक रूप से हम विफल नहीं होंगे। और आध्यात्मिक सफलता इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है और हमारे साथ है।
15 खुरदत की घटना का एक महत्वपूर्ण संदेश अत्याचारियों के मुकाबले में न तो नतमस्तक होना चाहिए और न ही साम्राज्यवादियों की धौंस धमकी से प्रभावित होना चाहिए। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए इमाम खोमैनी ने फरमाया था, 15 खुरदत इस्लाम और मुसलमानों के पुनर्जन्म का दिन है। 15 खुरदत के दिन को याद रखना मानवीय मूल्यों को याद रखने का दिन है। 15 खुरदत का दिन प्रतिरोध का वो दिन है जिसने शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। 15 खुरदत को शहीद होने वाले शूरवीर जवानों, मर्दों और महिलाओं ने अपने पावन लहू से तानाशाही की बुनियादों को धराशायी व ध्वस्त कर दिया। 15 खुरदत को शहीद होने वालों ने भावी पीढ़ियों को प्रतिरोध का रास्ता दिखा दिया और साथ ही उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली चीज को संभव करके दिखा दिया।
ईरानी संविधान में 15 खुरदत की घटना का उल्लेख इस्लामी क्रांति के इतिहास में भुलाई न जाने वाली घटना के रूप में किया गया है और इस दिन के महत्व के बारे में लिखा है, स्वर्गीय इमाम खुमैनी द्वारा अमेरिकी षड्यंत्रों पर आपत्ति ईरानी राष्ट्र के एकजुट होने का कारण बनी और वो यानी 15 खुरदत ईरान की इस्लामी क्रांति का आरंभिक बिंदु था। यद्यपि स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को ईरान से निष्कासित कर दिया गया था, परंतु जनता उनके दिशा निर्देशन की छत्र छाया में 15 खुरदत का आंदोलन आगे बढ़ा रही थी और शाह की अत्याचारी सरकार ने बहुत से लोगों की हत्या कर दी, फांसी दे दी और जेल में डाल दिया। परमाणु से पता चला कि 15 खुरदत के दमन में शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार अकेली नहीं थी, बल्कि अमेरिकी और जानवी शासन ने भी उसका साथ दिया। दूसरे शब्दों में शाह के अलावा अमेरिका और इसराइल ने भी ईरानी जनता का खून बहाने में संकोच से काम नहीं लिया। शाह की तानाशाही सरकार ये सोच रही थी कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के निष्कासित कर देने से वो क्रांति और क्रांतिकारियों का दमन कर देगी, परंतु जो हुआ वो शाह की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत हुआ। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने विचारों से ईरानी जनता को जागरूक बना रहे थे और ईरानी जनता व लोग उनके विचारों और आदेशों को व्यवहारिक बनाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। 15 खुरदत से पहले जो भी आंदोलन ईरान में हुए थे, यद्यपि उनमें धार्मिक और राजनीतिक नेता अलग अलग थे, परंतु 15 खुरदत में राजनीतिक और धार्मिक नेता एक हो गए थे।
पंद्रह खुरदत और दूसरे आंदोलनों में एक मूल अंतर यह है कि जब कोई आंदोलन आरंभ होता था तो कुछ दिनों के बाद वो कुछ व्यक्तियों और विदेशी गुटों के हितों की भेंट चढ़ जाता था, परंतु 15 खुरदत के आंदोलन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 15 खुरदत का जो आंदोलन था वास्तव में उसका आधार इस्लाम धर्म की शिक्षाएँ थीं। इसलिए विदेशी शक्तियां न केवल इसका समर्थन नहीं करती थीं, बल्कि उन्होंने इसे अपने लिए भी खतरा समझा और इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने इसके दमन में शाह का साथ दिया। 15 खुरदत से पहले जो आंदोलन होते थे वे तेहरान या कुछ दूसरे शहरों तक सीमित होते थे, परंतु 15 खुरदत का आंदोलन ईरान के किसी शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समूचे ईरान में फैल गया था।
यद्यपि 15 खुरदत का आंदोलन 57 साल पहले हुआ था और विदित में उसे कुचल दिया गया था, परंतु उसकी जो विशेषताएं थीं उसके कारण वो जारी रहा, यहाँ तक कि उसने 2500 साल पुरानी राजशाही सरकार का अंत करके उसे इतिहास का भाग बना दिया और आज पूरे ईरान में वो समस्त समाजों के लिए सीख बन गई। 15 खुरदत के आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि वो पूरी तरह धार्मिक था, जबकि उससे पहले तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए होने वाले जैसे आंदोलन पूरी तरह धार्मिक नहीं थे। 15 खुरदत से पहले होने वाले आंदोलनों के राजनीतिक और धार्मिक नेता अलग अलग होते थे, जबकि 15 खुरदत के आंदोलन में ऐसा नहीं था और उसका नेता एक साहसी राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति था और समस्त गुट और लोग भी उसे अपना नेता कहते व समझते थे।
15 खुर्दन से पहले होने वाले आंदोलन आरंभ में ही या बीच में कुछ लोगों के हितों के कारण अपने लक्ष्यों से हट गए, परंतु 15 खुर्दात को होने वाला आंदोलन स्वतंत्र रूप से जन आंदोलन और उसका आधार इस्लाम था। 15 खुर्दात का आंदोलन तानाशाही के खिलाफ इतने व्यापक पैमाने पर होने वाला पहला आंदोलन था जिसमें ईरान की मुसलमान महिलाएं हिजाब के साथ थीं, और यह आंदोलन पवित्र नगर गुम से आरंभ हुआ था जिसमें बहुत सी ईरानी महिलाएं भी शहीद हुईं। 15 खुर्दा 1342 हिजरी शमसी में होने वाले आंदोलनों के कुछ परिणाम लघुकालिक जबकि कुछ दीर्घकालिक थे, और उसके परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम शाह की तानाशाही सरकार का अंत था।
दोस्तों, रोचक बात यह है कि 15 खुर्दात के आंदोलन से पहले तक रजा शाह स्वयं को एक मुसलमान व मोमिन व्यक्ति दिखाता हुआ दर्शाता था, और कभी कभी वो ये भी कहता था कि उसे गैबी सहायता प्राप्त है। परंतु 15 खुर्दात के आंदोलन के दौरान उसने अपनी वास्तविकता स्पष्ट कर दी। वो स्वयं को शिया धर्म और शिया मुसलमानों का रक्षक समझता था और इस राष्ट्र के दुश्मनों को शियों का दुश्मन बताता था। जैसा कि उसका पिता रजा खान सत्ता तक पहुंचने के लिए आरंभ में इमामों की पावन समाधियों की ज़ियारत करने और धर्मगुरुओं से मुलाकात के लिए जाता था, यही नहीं रजा खान नंगे पैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शोक सभाओं में भाग लेता था, मगर जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि उसकी सरकार के स्तंभ मजबूत हो गए हैं तो उसने हिजाब करने और मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को मना कर दिया।
1342 हिजरी शमसी में शाह के सुरक्षा कर्मियों ने पवित्र गुम के प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षा केंद्र मदरसे फैजिया पर हमला करके बहुत से धार्मिक छात्रों को शहीद कर दिया। शाह के इस कार्य से उसके चेहरे पर इस्लाम की बड़ी नकाब हट गई और अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जिससे उसके इस कृत्य का औचित्य दर्शाया जा सके। यद्यपि शाह ने इसके बाद दोबारा मस्जिदों का निर्माण और पवित्र कुरान को छपवाना आरंभ कर दिया ताकि दोबारा लोगों में स्वयं को धार्मिक दर्शाएं, परंतु उसके इस पाखंड का कोई नतीजा नहीं रहा और 15 खुर्दात का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व धर्मगुरु कर रहे थे, और इस आंदोलन के बाद शाह की तानाशाही सरकार को अवैध सरकार की संज्ञा दी गई और समाज में जो मुश्किलें व समस्याएँ थीं उसके लिए शाह को जिम्मेदार बताया गया और पहली बार तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उसके पहले तक कोई शाह पर टीका टिप्पणी करने का साहस नहीं करता था, परंतु इमाम खुमैनी ने 1342 हिजरी शमसी में आशुर के दिन शाह की आलोचना की जिससे शाह की जो धौंस थी वो ख़त्म हो गई। ये वो चीज़ है जिसे शाह के गुप्तचर सेवा सवाक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है।
बहरहाल 15 खुर्दात के आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता और लोग अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं और एकजुट रहकर बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकार का भी अंत कर सकते हैं। यद्यपि उन सरकारों को दुनिया की वर्चस्ववादी शक्तियों का समर्थन ही क्यों न प्राप्त हो।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।